ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को प्रतिनिधि सभा में मिले दो तिहाई से अधिक के समर्थन। विश्वास मत के पक्ष में 188 और विपक्ष में पड़े 74 मत। नागरिकों में बढ़ती जा रही निराशाओं को समाप्त करने और तीव्र आर्थिक विकास के रास्ते में देश को ले जाने के लिए नई सरकार गठित हुई है, प्रधानमंत्री ओली का कथन। लुम्बिनी और बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने पदों से दिया इस्तीफा और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण संबंधी कानून को किया खारिज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को प्रतिनिधि सभा में दो तिहाई से अधिक का समर्थन मिला। आज प्रतिनिधि सभा में प्रधानमंत्री ओली को विश्वास मत देने के प्रस्ताव पर पक्ष में 188 और विपक्ष में 74 मत आए। वहीं एक सांसद ने मत न देने की बात कही। ये जानकारी सभामुख देवराज घिमिरे ने दी। इससे पूर्व बैठक में विश्वास मत संबंधी प्रस्ताव पेश करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नागरिकों में बढ़ती जा रही निराशाओं को समाप्त कर आशा और उत्साह का संचार करने के साथ ही देश को तीव्र आर्थिक दिशा में बढ़ाने के लिए नई सरकार का गठन हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री ओली ने विकास और सुधार के विभिन्न पहलुओं पर काम करने की बात कही। उन्होंने बैंकों में बड़े पैमाने पर पैसे इकट्ठे होने और कर्जा प्रवाह न होने, लोन न चुका पाने के कारण व्यवसायियों के ब्लैकलिस्ट होने जैसी स्थिति को बदलते हुए अर्थतंत्र को गति देने की बात कही। इसके अलावा युवाओं के विदेश पलायन को रोकने, विकास निर्माण के काम समय पर संपन्न करने, आयात प्रतिस्थापन, आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य से सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि क्षेत्र में निवेश जैसे बहुत से विकास और सुधार के काम भी सरकार द्वारा किए जाने की बात प्रधानमंत्री ने कही। मौके पर नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि जनता की निराशाओं का अंत करते हुए अर्थतंत्र को चलायमान बनाने और देश के अंदर ही रोजगारी सृजित करने में सरकार ठोस योगदान करेगी, ये उनका विश्वास है। वहीं नेकपा माओवादी केंद्र के उप महासचिव एवं पूर्व अर्थमंत्री वर्ष मानपुन ने कहा कि सरकार गलत तथ्यांक प्रस्तुत करके जनता में भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है, इसलिए जनता में निराशा बढ़ी है। बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति एवं पूर्व गृहमंत्री रवि लामिछाने ने कहा कि सरकार सुशासन के पक्ष में काम करेगी, इस बात से भरोसा अब उठने लगा है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी प्रतिपक्ष में रहेगी और गुण और दोष के आधार पर समर्थन या विरोध करेगी। इसी तरह राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन और नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने भी अपने अपने विचार रखे थे। इससे पूर्व संसद बैठक के शुरू में सांसदों ने उपसभा मुख इंदिरा राणा के प्रवेशाज्ञा वीजा के लिए अमेरिकी दूतावास को सिफारिश किए गए विषय, वृद्ध वृद्धाओं को परिचय पत्र बनाने में हो रही कठिनाई, लगायत मुद्दों पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सोमवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। लुम्बिनी और बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लुम्बिनी प्रदेश सभा की आज की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जोग बहादुर महरा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संघीय सरकार में सत्ता समीकरण में बदलाव होने के साथ ही नेकपा एमाले ने सरकार को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद सरकार अल्पमत में पड़ गई और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री महरा के इस्तीफे के साथ ही एमाले और नेपाली कांग्रेस नई सरकार गठन की तैयारी में जुट चुकी है। ये जानकारी एमाले के प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरी ने दी। बता दें कि नई सरकार बनाने के लिए एमाले संसदीय दल के नेता लीला गिरी के नेतृत्व में दावा पेश करने की तैयारी भी की गई है। सत्ता सहकार्य के लिए अन्य छोटे दलों को भी प्रदेश सरकार में शामिल करने की तैयारी की गई है, ये जानकारी प्रमुख सचेतक चौधरी ने दी। इसी तरह बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री शालिक राम जमकटेल ने बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चंद्र शर्मा समक्ष इस्तीफा पेश किया। मुख्यमंत्री जमकटिल के इस्तीफे के साथ ही बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नेपाली कांग्रेस की ओर से संसदीय दल के नेता बहादुर सिंह लामा का नाम तय हुआ है। आज हेटौड़ा में हुई संसदीय दल की बैठक ने लामा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का निर्णय किया। बागमती प्रदेश के प्रदेश प्रमुख यादव चंद्र शर्मा ने नई सरकार गठन के लिए आह्वान किया है। प्रदेश प्रमुख शर्मा ने नेपाल के संविधान की धारा 168 की उपधारा 2 के मुताबिक दो व दो से अधिक दलों के समर्थन में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रदेश सभा सदस्यों को मुख्यमंत्री पद के लिए मंगलवार दोपहर 5 बजे के भीतर दावा पेश करने का आह्वान किया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री विशेश्वर प्रसाद कोरला के योगदान को याद करते हुए आज देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 42वां स्मृति दिवस मनाया गया। वीपी कोरला के 42वें स्मृति दिवस के अवसर पर आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आयोजित वीपी कोरला राष्ट्रीय पुरस्कार 2080 समर्पण समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि तत्कालीन राजा ने प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री वीपी कोरला को यह संदेश देने के लिए जेल में डाल दिया कि निर्वाचित होने की छूट नहीं है। 42वें वीपी स्मृति दिवस के अवसर पर पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए पार्टी सभापति शेर बहादुर देववा ने कहा कि वीपी जीवन भर कभी नहीं थके और अपने सिद्धांतों और राष्ट्र के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार थे। महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि जेल नेल की अवधि में भी नेताओं द्वारा अपनाई गई पढ़ने की संस्कृति को जारी रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के खिलाफ दायर रीट याचिका को सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल की एकलपीठ ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के खिलाफ रीट याचिका में उठाए गए मामले को गंभीर संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न होने की बात बताते हुए संवैधानिक इजलास में भेजने का आदेश दिया है। अधिवक्ता दीपक अधिकारी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल और अधिवक्ता विजय हमाल द्वारा दायर एक अलग याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़े दल के संसदीय दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करने की बजाय राष्ट्रपति ने दो या दो से अधिक दलों के समर्थन से नई सरकार के गठन का आह्वान करके संवैधानिक आदेश का उल्लंघन किया है। आज गुरु पूर्णिमा देश भर मनाया गया। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। महर्षि व्यास का अवतरण आषाढ़ की पूर्णिमा को ही हुआ था। व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र और महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। व्यास जी गुरुओं के भी गुरु माने जाते थे, इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सभी शिष्य अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। मोरंगी विराटनगर महानगर पालिका क्षेत्र में जापान सरकार के सहयोग में जायका ने पेयजल सुधार परियोजना संचालित की है। परियोजना संपन्न होने के बाद उस क्षेत्र के 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। ये जानकारी नेपाल पेयजल संस्थान विराटनगर ने दी। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड के अंतर्गत चितवन की भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 29 सीमरताल में भूस्खलन के साथ दो बसें त्रिशूली नदी में गिरने से लापता हुए यात्रियों की तलाश के लिए 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन के लिए सुरक्षाकर्मियों के साथ चितवन पहुंची भारतीय तकनीकी टीम ने आज सुबह सीमरताल से घटनास्थल पर सर्चिंग शुरू कर दी है। चितवन के एसपी भावेश रिमाल ने बताया कि भारतीय तकनीकी टीम ने नेपाली सुरक्षाकर्मियों के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एसपी रिमाल ने कहा कि टीम सोनार कैमरों सहित प्रविधि का उपयोग कर रही है जो 30 मीटर गहराई तक वस्तुओं का पता लगा सकती है। गौरतलब है कि अब तक 25 लापता लोगों के शव मिल चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में जारी छात्रों के आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतर सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का फैसला दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश में 93% सरकारी नौकरियों में भर्तियां योग्यता के आधार पर की जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 1971 स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे सेनानियों के परिजनों को सिर्फ 5% आरक्षण दिया जाए, बाकी 2% नौकरियों को विकलांगों, ट्रांसजेंडरों और नस्लीय अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित रखा गया है। जुलाई की शुरुआत से ही बांग्लादेश में हजारों छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में कोटा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देश में लागू मौजूदा कोटा व्यवस्था सत्ताधारी आवामी लीग के करीबी लोगों को फायदा पहुंचाती है। अब तक बांग्लादेश में एक तिहाई सरकारी नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षित थी। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। यहां अब तक कम से कम 115 लोग मारे गए हैं। हालांकि स्थानीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों की तादाद इससे कहीं अधिक हो सकती है। शुक्रवार को ही कम से कम 50 लोगों की मौत हुई थी। बांग्लादेश सरकार ने राजधानी ढाका में शनिवार को कर्फ्यू लगा दिया था। आज भी राजधानी ढाका की अधिकतर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने साल 2018 में इस विवादित कोटा व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, लेकिन पिछले महीने हाई कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया, जिसके बाद से ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को प्रतिनिधि सभा में मिले दो तिहाई से अधिक के समर्थन। विश्वास मत के पक्ष में 188 और विपक्ष में पड़े 74 मत। नागरिकों में बढ़ती जा रही निराशाओं को समाप्त करने और तीव्र आर्थिक विकास के रास्ते में देश को ले जाने के लिए नई सरकार गठित हुई है। प्रधानमंत्री ओली का कथन। लुम्बिनी और बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने पदों से दिया इस्तीफा और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण संबंधी कानून को किया खारिज। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।